ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में श्री शाह ने कहा कि देश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सजा दिलाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है।
भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूँ राणा का यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है।
श्री शाह की टिप्पणी तहव्वुर राणा को आज विशेष विमान से भारत लाए जाने के समाचारों के बीच आई है। इससे पहले राणा ने अपने प्रत्यर्पण के विरुद्ध याचिका दी थी जिसे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता नरेंद्र मान को वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा मामले में सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि नरेंद्र मान को 3 वर्ष के लिए दिल्ली और अपीलीय न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उपयोगकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नए आधार कानून को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 से जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब आधार कानून बनाया गया था तब कानूनी ढांचे में कई कमियां थीं लेकिन अब उन्हें दूर कर लिया गया है। स्लोवाकिया की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और साझा वैश्विक तथा क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड भी सौंपेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ करेंगे। वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। भारत और ब्रिटेन ने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत और ब्रिटेन कल लंदन में 13वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता में शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री रेचल रिव्स के नेतृत्व में ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए जवाबी आयात शुल्क पर 90 दिन तक रोक लगाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ये 90 दिवसीय विराम पारस्परिक और 10% शुल्क पर लागू होगा। उधर चीन ने अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84% शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने कहा कि वो अमेरिका पर अपने जवाबी शुल्क को 34% से बढ़ाकर 84% कर रहा है। देश भर में आज 24वीं और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती पर देशवासियों को और विशेष रूप से जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। महावीर जयंती जैन समुदाय के पवित्र दिनों में से एक है। निशानेबाजी में भारत के आर्य बोर्स और रुद्राक्ष पाटिल ने कल अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISSF विश्व कप में मिक्स 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसी के साथ पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक लेकर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।